हरे कृष्ण। तो ये अध्याय 6 है, इस अध्याय का शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू हरे कृष्ण जप। आर्ट ऑफ चैंटिंग में हम लोग आगे ये सेक्शन ले रहे हैं। इसमें लिखा है कि गुरु गुरांग की सेवाओं में जितनी भी सेवा है, कई प्रकार के नियम होते हैं, कई प्रकार के विधि विधान होते हैं, लेकिन सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ऑफ ऑल द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑर्डर टू चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स इज मोस्ट एसेंशियल। तो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमानस मध्य लीला 22वां अध्याय श्लोक संख्या 113 के तात्पर्य में दिया है। इसलिए सत्सुरुदास गोस्वामी महाराज ने भी एक पुस्तक जो लिखी है लाइफ विद परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर, उस पुस्तक में वो अपना अनुभव बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद के वो पर्सनल सर्वेंट से सेक्रेटरी थे और प्रभुपाद ने उनको बहुत सेवाएं दी थी, बहुत तरह तरह की सेवाएं दी थी। तो हजारों की तादाद में चिट्ठियाँ आती थी, उन प्रश्नों का उत्तर देते थे प्रभुपाद। तो बहुत सारी सेवा होने के कारण कई बार ऐसा होता था कि उनकी माला ठीक से नहीं हो पाती थी, तो इस वजह से बहुत चिंतित थे वो, और प्रभुपाद के सामने कुछ बोलने में वो डर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, सभी चिट्ठियों के ऊपर अपनी चिट्ठी रख ली, जहाँ चिट्ठियों का ढेर लगा था उन चिट्ठियों के ऊपर प्रभुपाद के सामने उन्होंने अपनी चिट्ठी रख दी उन चिट्ठियों के ऊपर, और प्रभुपाद ने उसको पढ़ा। तो प्रभुपाद ने जैसे ही पढ़ा उनको बुलाया, तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या समस्या है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो प्रभुपाद ने कहा अगर पहले बता दे तो मेरी सेवा तुम्हारी मैं कम कर देता। तो प्रभुपाद तुरंत जो है फिर और एक भक्त को बुलाया और कुछ एकाध सेवा उस भक्त को दे दी। फिर प्रभुपाद ने ससुर महाराज को यही बात बोली प्रभुपाद ने। तो यहाँ लिखा है फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑर्डर टू चैन एटलीस्ट 16 राउंड्स इज मोस्ट एसेंशियल। तो प्रभुपाद ने सेवा कम कर दी ताकि ये सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है वो हो सके। तो कहने का अर्थ ये है हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है वो हरिनाम के माध्यम से जुड़ता है। जैसे ही हम लोग हरिनाम लेने लगते हैं हम लोग भक्तों के समाज में शामिल हो जाते हैं। कोई अगर बिना माला के आता है, बिना जप माला के आता है, पहली बार आता है, तो उसको अतिथि तो बोलते हैं लेकिन भक्त की कैटेगरी में नहीं डालते। लेकिन जैसे उसके गले में जप माला देखते हैं और देखते हैं कि वो माला करने लगा है या दो माला करने लगा है, तो तब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं हाँ ये भक्त है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो हरिनाम है वो संबंध ज्ञान स्थापित करता है, यानी कि हमारा संबंध क्या है भगवान से ये हमें बताता है, और हमें सेवा प्रदान करता है, नाना प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है और सेवा का फल भी प्रदान करता है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों ही लाभ जो है हमें इस हरिनाम से मिल जाता है। हरिनाम से हमारा संबंध जुड़ता है भगवान से, कृष्ण से, और उनकी सेवाएं प्राप्त होती हैं, और उसके बाद साथ में सेवा का प्रयोजन जो कृष्ण प्रेम है वो भी हरिनाम के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इस हरिनाम में सब कुछ है। तो प्रभुपाद ने चार बातें बताई कि जप में, कि प्रातः काल हम लोग उठ के जप करें, ब्राह्म मुहूर्त के समय उठें और इस महामंत्र का जप करें, तो ये बहुत जरूरी है, और साथ में ठीक से इसका उच्चारण करें, शब्दों को खाए नहीं, क्योंकि 16 शब्द में अगर एक भी शब्द कम हो जाता है तो फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशन, ये 16 शब्दों का नाम, वो 16 शब्द पूरे होने चाहिए और उच्चारण इसका पूरा होना चाहिए स्पष्ट रूप से, और उच्चारण ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद उसका उच्चारण करके, खुद रिकॉर्ड करके उसको दोबारा सुन सकते हैं कि कहीं हम लोग कोई शब्द खा तो नहीं रहे। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि हमारी माला 5 मिनट में हो जाती है, कैसे ही बोलते 4 मिनट में हो जाती है, तो भाई गलत तो नहीं हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, खुद अपना आप चैंटिंग रिकॉर्ड करिए, सुनकर देखिए और आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द आपने मिस किया, क्योंकि इन्हें केवल चैंटिंग से भी हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ मिलना चाहिए। और उसके बाद पूरे ध्यान से हमें जप करना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय हमें किसी से ना बात करनी चाहिए, ना इधर उधर हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम लोग एक जगह बैठ के जप नहीं कर सकते लंबे समय तक, तो उसी जगह खड़े होकर जप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो थोड़ा बहुत आप घूमकर भी जप कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे तक, जैसे मंदिर में भक्तों के संग में रहकर जप किया जाता है। और अगर आप घर पे हैं तो आपके घर में भी ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर आप जप कर सकें। तो इस तरह से स्थान को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। कोई भी साधना के लिए स्थान की बड़ी आवश्यकता है। इसे भगवान गीता में कहते हैं, कर्म के पांच कारण बता रहे हैं, उसमें पहला बता रहे हैं अधिष्ठानम, स्थान, लोकेशन। स्थान चुनना बहुत जरूरी है साधना के लिए, कोई भी भजन के लिए, साधना के लिए स्थान चुनना बहुत जरूरी है। रोज स्थान बदलने से भी एकाग्रता नहीं आती। कई बार देखते हैं भक्त लोग बैठते हैं कभी इधर बाई तरफ, अगले दिन बैठते हैं दाई तरफ, अगले दिन बैठते हैं पीछे, चौथे दिन बैठते हैं आगे। तो अगले हर दिन वह स्थान बदलते रहते हैं, तो वो साधना ठीक नहीं है। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि उसका मन बड़ा चंचल है, क्योंकि मन घूम रहा है तो शरीर भी घूम रहा है। जहां आपका मन जाएगा वहीं आपका शरीर भी जाएगा, है ना। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्ये कलेवरम, अंतकाल में भी ऐसे ही होगा, जहां आपका मन होगा वहीं आपका शरीर जाएगा, या वहीं आप जाओगे शरीर छोड़ के। और उसी तरह से जब आप इस शरीर में हैं तो जहां आपका मन है वहीं आप घूमेंगे। तो इसलिए एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए लाभ उठाने के लिए पूरा हमें तुलसी महारानी के समक्ष या फिर गुरु के समक्ष, या मंदिर में है या घर पे है तो प्रभुपाद जी का चित्र या अपने गुरु महाराज का चित्र सामने रखकर, या फिर भगवान का चित्र, राधा कृष्ण का चित्र रखे सामने, और तुलसी महारानी के साथ बैठ के तुलसी महारानी के पास बैठ के हम लोग जप करें, तो बहुत लाभ मिलता है। तुलसी महारानी के पास जप करने से बहुत लाभ मिलता है, ऐसा स्कंद पुराण में दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, चैंटिंग जपा शुड बी डन अर्ली इन द मॉर्निंग विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेफरेबली ड्यूरिंग द ब्रह्म मुहूर्त टाइम, कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन द साउंड वाइब्रेशन ऑफ द मंत्र, बाय प्रोनाउंसिंग ईच नेम डिस्टिंक्टली योर स्पीड इन चैंटिंग विल ग्रेजुअली इंक्रीज नेचुरली। तो स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे और शब्दों को ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो हमारी गति है वो भी बढ़ जाएगी। डू नॉट वरी सो मच अबाउट चैंटिंग फास्ट, क्योंकि हम लोग कोई कॉम्पिटिशन में तो है नहीं, मैराथन में, कि हमें 2 मिनट माला पूरी करनी है या हमने 1 घंटे माला पूरी कर दी हम फर्स्ट आ गए, है ना। उससे कोई प्रूव नहीं होगा हमारा एडवांसमेंट। तो मेन पॉइंट है कि हमें बड़े ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है और स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है, तो उसका लाभ मिलेगा हमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हियरिंग। और इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, कई गौड़िया वैष्णव है वो इस श्लोक का उच्चारण भी करते हैं जो श्रीमद् भागवत के भागवत से लिया गया है। और इसमें लिखा है कि वन शुड ऑफर ऑबेसेंसेस अंडर द लॉर्ड विद अ माइंड हम्बल्ड थ्रू डिवोशन, मतलब जब जैसे ही हमारा पूरा होता है तो हमें इस हरिनाम प्रभु को प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि हरिनाम लेते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आप अपनी सेवा में लगाइए। तो ये प्रार्थना निरंतर कैसे करें हम, जब करते समय करेंगे तो कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि मैकेनिकल हो रहा है, तो हमें सेवा में लगाइए, हमें सेवा में लगाइए, तो ये तो ऐसा लगेगा कुछ बनावटी सा लगेगा। तो यहाँ बता रहे सबसे अच्छा तरीका ये है कि माला जैसे पूरी होती है तो माला पूरी करने के बाद फिर हम ये प्रार्थना करें, हमें आप अपनी सेवा में लगाइए, है ना, हरिनाम प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार, और दूसरा ये प्रार्थना, एक और प्रार्थना यहाँ बताई गई है, त्रिभंग भंगम रूपम वेणु रंग करंचितम गोपी मंडल मध्यास्थम स्मरामी नंद नंदनम। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाता हूँ तो नंद महाराज के पुत्र हैं और जो वेणु बजाते हैं त्रिभंग रूप में खड़े हो जाते हैं इनके मध्य में, ब्रज गोपियों के मध्य में। जब के पूरे होने पर तो इस प्रकार हमें प्रणाम करना चाहिए, जैसे बताया हमने ये भागवत के छठे स्कंद से लिया है, भक्ति प्रवे न चेतसा, सिक्स कैंटो 19 चैप्टर टेक्स्ट 10। तुलसी बीड्स आर बेस्ट। तो महामंत्र का जब हमें तुलसी माला में करना चाहिए। कई बार हम लोग नए लोगों को लकड़ी की माला या नीम की माला देते हैं, साधारण लकड़ी की माला देते हैं या नीम की माला देते हैं, हम बोलते हैं कि आप नियम नहीं पालन कर रहे हैं इसलिए आप तुलसी में मत करिए। तो ये भ्रांति है, ये भ्रम है। हमें शुरू से ही तुलसी माला देनी चाहिए, पहले दिन जो आता है उसको तुलसी माला में जप कराना चाहिए। ये हरिभक्तिलास में लिखा हुआ है। हरिभक्तिलास में तो यहां तक लिखा है कि कंठी माला भी शुरू से ही पहननी चाहिए। हालांकि हम उसको प्रचार में इसका उपयोग नहीं करते इस बात का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई कंठी माला पहना हुआ है और सिगरेट पी रहा है और तिलक भी लगाया है, तो कोई बोल सकता है देखो इस्कॉन वाले जो है वो तो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन वो पहले दिन एक ही दिन हुआ उसको आए हुए, तो आदत तो उसकी छुट्टी नहीं है अभी तक। तो इस कारण से कंठी माला मना कर देते हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें गलती नहीं है। हरिभक्तिलास में स्पष्ट दिया हुआ है, सुदेहा लिखा है, अगर आप पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, किसी भी परिस्थिति में हो, प्रत्येक परिस्थिति में तुलसी की कंठी माला धारण करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। तुलसी हमें शुद्ध करेगा, हम तुलसी को शुद्ध नहीं करते, है ना, तुलसी हमें शुद्ध करता है। तो तुलसी के स्पर्श से पापी से पापी व्यक्ति भी जो है वो पुण्यात्मा बनने लगता है, सुकृति प्राप्त करता है, आध्यात्मिक सुकृति प्राप्त करता है। लेकिन जहाँ तक जप का सवाल है, हमें जोर देना चाहिए कि वो तुलसी की माला में जप करें, ये बहुत ज़रूरी है। तुलसी की माला में जप करने से वो जल्दी आगे बढ़ेगा, और जो हम लोग उससे चाहते हैं कि वो संख्या बढ़ाए धीरे धीरे, वो अपने आप ही देखेंगे कि उसकी प्रगति जल्दी होगी। और जो दुर्गा के उपासक हैं वो रोजवुड बीट्स पे करते हैं, जब करते हैं। शैवेत हैं वो रुद्राक्ष में करते हैं, जो शिवजी के उपासक हैं। एक वैष्णव जो हैं वो तुलसी की माला में जब करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है बात का। और तुलसी क्योंकि बहुत प्रिय हैं, कृष्ण की बहुत प्रिय हैं, और जो भी तुलसी को धारण करता है, उसकी पूजा करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे भक्त के ऊपर कृपा होती है। कई ऐसे तदीय वस्तु हैं जिसका परित्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने चार वस्तुओं के बारे में बताया। एक बताया तुलसी के बारे में, दूसरा बताया भागवत के बारे में, तीसरा बताया गंगा जी के बारे में, चौथा बताया वैष्णवों के बारे में। इन चारों का परित्याग या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। कहीं भी जाए आप, बंबई जाएं, अमेरिका जाएं, रशिया जाएं, यूरोप जाएं, या भारत के अंदर भी कहीं जाएं, प्रयास हमें करना चाहिए कि हर जगह पर हम लोग इन बातों का ध्यान रखें। और अगर भक्तों का संग नहीं मिलता है तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें साथ में ले जाएं, है ना। और गंगा जी का अगर जल नहीं प्राप्त होता है तो गंगा जी का स्मरण किया जा सकता है। गंगा जी का उच्चारण, गंगा जी का नाम 5 बार अगर आप बोलते हैं, गंगा 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 5 बार बोलते हैं, तो गंगा जी में स्नान करने का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार गंगा जी को प्रणाम किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन प्रातः काल में जय ध्वनि में भी हम बोलते हैं, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, है ना। वैष्णव को प्रणाम करना, अगर वैष्णव नहीं है तो मानसिक रूप से हम लोग वैष्णव को प्रणाम कर सकते हैं। चारों दिशाओं में जहाँ भी वैष्णव हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हर परिस्थिति में इन बातों का ध्यान रखें, और अगर आप निरंतर रूप से ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आपको हर जगह पे, हर स्थान में कहीं ना कहीं तुलसी महारानी मिलेंगे और आप उनकी सेवा कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हरि भक्ति सुदोदय में यमदूत बता रहे हैं वैष्णव ब्राह्मण को कि हम नहीं समझते हैं कि कृष्ण जो है तुलसी देवी को प्रणाम प्रेम करते हैं, और जब भी कोई तुलसी को अपने हाथ में धारण करता है, हरि जो है भगवान श्री हरि उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं और उसकी पूरी रक्षा करते हैं। तो तुलसी महारानी जो है वो भक्ति प्रदान करने वाली, लेकिन तुलसी देवी और भक्ति देवी ये अलग अलग है इंडिविजुअल्स। कई बार ये भी देखा गया, बोलते भक्ति देवी तुलसी महारानी, तुलसी महारानी तुलसी देवी भक्ति देवी की जय, है ना, तो वो ठीक नहीं है। तुलसी महारानी भक्ति जरूर देते हैं, लेकिन वो भक्ति देवी अलग व्यक्ति हैं, अलग इंडिविजुअल है। भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, अगर आप प्रभुपाद का सुनेंगे जय ध्वनि, तो प्रभुपाद अलग अलग बोलते हैं, एक साथ नहीं बोलते। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आगे अगला जो विषय चल रहा है, जपा साइलेंट और लाउड। तो हरिदास ठाकुर से पहले ये बता रहे हैं कि अधिकांश लोग जो है मानसिक जप करते थे, यानी कि महामंत्र का जप कर रहे हैं लेकिन मुंह बिल्कुल बंद है और मन से महामंत्र का उच्चारण चल रहा है, और इस तरह से 108 मन के पूरा करते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर के आने के बाद उन्होंने इस बात को पलट दिया, और उन्होंने भी शास्त्रों के आधार पर स्थापित किया कि वास्तव में मानसिक जप लाभकारी जरूर है, लेकिन उससे जरूर ज़्यादा लाभ मिलता है जब हम उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो शास्त्रों में, यहाँ तक कि हरि भक्ति विलास में भी ऐसा दिया गया है कि मानसिक जप का हजारों गुना लाभ मिलता है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने दिया है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जप, आउट लाउड, मर्मरिंग एंड साइलेंटली विद इन द माइंड, मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम्स वन आफ्टर अनदर। मर्मरिंग इज 100 टाइम्स बेटर देन लाउडली चैंटिंग जप। चैंटिंग इन द माइंड इज 1000 बेटर देन अ लाउड चैंटिंग। ऐसा हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है और कई शास्त्रों में दिया है। लेकिन हरिदास ठाकुर जब आए तो उन्होंने जोर से उच्चारण शुरू कर दिया, जप का उच्चारण जोर से करना शुरू किया और कीर्तन भी करना शुरू किया। 64 माला वो करते थे मन से, 64 माला वो करते थे उपांशु जप, यानी कि जितना कि खुद को सुनाए दे, और 64 माला वो करते थे वाचिक जप, जोर से चिल्ला के। तो इस तरह से वो 192 माला करते थे, लेकिन 192 माला उनकी 12 घंटे में पूरी हो जाती थी स्पीड के कारण, तो उनकी नकल तो हम लोग नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर से कई स्मार्ट ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वो प्रश्न करते थे कि आप इतने जोर शोर से उच्चारण क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि वास्तव में ये नाम संकीर्तन जो है वो हजार गुना ज्यादा लाभकारी है अन्य प्रकार की उपासनाओं से, और कहीं भी शास्त्रों में उच्च स्वर से उच्चारण करने को गलत नहीं बताया गया, बल्कि उसका लाभ ही बताया गया है। और क्या लाभ बताया गया है, यहाँ तक कि जो आसपास के चराचर जीव हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी लाभ मिलता है, यानी कि वैष्णव जो है उसके हृदय में करुणा होती है, वो खुद को लाभ तो पहुँचा ही रहा है, दूसरों को भी लाभ पहुँचाना चाहता है, तो इससे और ज़्यादा लाभ मिलता है। और यहाँ पे बता रहे हैं हरिदास ठाकुर रिप्लाइड, ओ ब्राह्मण प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन एनी लिविंग एंटिटी, बी इट मैन, बर्ड और बीस्ट, हियर्स द होली नेम चैंटेड बाय अ प्योर डिवोटी, ही गोज डायरेक्टली टू वैकुंठ आफ्टर लिविंग दिस बॉडी। हरिदास ठाकुर बता रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद वो वैकुंठ चला जाएगा। श्रीमद् भागवतम सेज अच्युत, एनीवन हु चैंट्स योर नेम प्यूरिफाइज ऑल हु हियर्स चैंटिंग एज वेल एज हिमसेल्फ। वन हु चैंट्स द होली नेम टू हिमसेल्फ लिबरेट हिमसेल्फ ओनली। वन हु चैंट्स द लॉर्ड्स नेम लिबरेट्स एनीवन हु हियर्स हिम। द साउंड ऑफ द लॉर्ड्स नेम इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो खुद का उद्धार भी कर रहे हैं और दूसरों का उद्धार भी कर रहे हैं। ऑल्सो स्क्रिप्चर्स असर्ट द लॉर्ड चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम इज 1000 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रिलीजियस प्रोसेस। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, A person who chants Harinam loudly is 100 times superior to one who chants quietly. A person who chants quietly only purifies and benefits himself, whereas one who chants loudly certainly benefits himself. Plus, he purifies all who hear him, such as birds, bees, insects, trees, and plants. Such living entities cannot chant Krishna's name, but they can be delivered from the ocean of birth and death simply by hearing Harinam. So, this is Narad Dev Puran mein diya hua hai. प्रहलाद महाराज का ये श्लोक। तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि हरि नाम का उच्चारण क्योंकि मनुष्य ही कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण किया जाता है तो उन पशुओं को भी लाभ मिलता है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, डिवोटी कैन डू गुड नॉट ओनली टू ह्यूमैनिटी बट टू ऑल ह्यूमैनिटी एज वेल। एवरीवन कैन बेनिफिट स्पिरिचुअली बाय चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। व्हेन द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्ण साउंडेड when the trees, animal, insect benefit. Thus, when one chants Hare Krishna Mahamantra loudly, he actually shows mercy to all living entities. और जी गोस्वामी ने भी करक्रम संदर्भ बताया है कि द चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स नेम शुड बी लाउड। और बलदेव जी आभूषण बता रहे स्तंभ वाला विभूषण भाष्य में, वह हरे कृष्ण महामंत्र लाउडली वाइब्रेटेड कृष्णा हिमसेल्फ डांसेस ऑन वन टंग। और जोर से हम जो उच्चारण करते हैं हरि नाम संकीर्तन में, तो हम जा देखते हैं कि किस तरह से जल्द ही भक्त लोग फिर क्या करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। और कलयुग में बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है मानसिक जप, क्योंकि हमारा मन इतना ज्यादा दूषित है, मन इतना ज्यादा रजोगुण से तमोगुण से भरा है कि अगर आप मन से जप करने लगेंगे तो कुछ समय के बाद सो जाएंगे और शायद याद भी नहीं होगा कि हम कभी जप कर रहे थे, हम भूल भी जाएंगे कि हम जप कर रहे थे क्या। तो ये बहुत बुरी हालत है, इसलिए जब हम जोर से उच्चारण करते हैं तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है, शब्द ध्वनि है, वो वापस हमारे मन को दोबारा केंद्रित करता है हरि नाम के उच्चारण में। तो इसलिए बताया गया कि कली कलमश नाशन, कलयुग में कलमश बहुत है, पाप बहुत है, कलह बहुत है, और इस कारण से क्या है कि जब हम जोर से उच्चारण करेंगे तो जो भटकता हुआ मन है दोबारा फिर सही रास्ते पे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा है, एक जगह पर लिखा है, ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा बताया यहाँ पे, इफ यू सुपरफिशियली ट्राई टू चैंट साइलेंटली इन द माइंड द ऑपोजिशन विल बी सो ग्रेट दैट यू विल बी नोवेयर, यू विल टर्न इनटू एन एथिस्ट। क्योंकि समय के बाद आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा पूरी तरह से टूट जाएगी हरि नाम। तो मानसिक जप जो है वो जब तक गुरु आज्ञा ना दे हमें जप नहीं करना चाहिए, हरि नाम मानसिक नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि जो गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रभुपाद का मार्ग निर्देशन है कि वो जब तक गुरु का आदेश ना हो तब तक गायत्री मंत्र भी जो है मानसिक रूप से जप नहीं करना चाहिए, यानी कि होंठ हिलाकर करना चाहिए, आवाज नहीं निकालना, आवाज नहीं निकालते गायत्री में, लेकिन होंठ जरूर हिलाने चाहिए। तो मानसिक जप जो है काफी जो उन्नत वैष्णव है उनके लिए होता है, और अगर उन्नत भी है कोई तो वो केवल मानसिक जप नहीं करेगा, क्योंकि कोई अगर उन्नत है वो दूसरों को भी लाभ पहुंचाना चाहेगा, इसलिए वो भी जोर से उच्चारण करेगा। हालांकि वो मानसिक जप कर सकता है लेकिन वो जोर से उच्चारण क्यों कर रहा है, तो दूसरे को लाभ मिले। इसलिए प्रभुपाद गए और पार्क में गए, पेड़ के नीचे बैठ के वहां शुरू कर दिया कीर्तन अकेले, ताकि दूसरों को लाभ पहुंचे, है कि नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो प्रभुपाद हमेशा प्रेफर करते थे वैकारी जप, वाचिक जप भी कहते थे इसको, जोर से जप करना। और प्रभुपाद के आप देख सकते हैं जपा कैसेट में प्रभुपाद का चैंटिंग है ना, प्रभुपाद का चैंटिंग कितना पावरफुल होता है। और ये भी एक उपाय है कि जब हम जप करें तो प्रभुपाद का चैंटिंग जो है बॉक्स उसको साथ में रख सकते हैं और धीमी गति में चलाकर साथ साथ प्रभुपाद के चैंटिंग के साथ हम चैंटिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या है, हमें और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और ऐसा लगेगा कि साथ में कोई है हमारे, है ना। क्योंकि हमें अकेले डर लगता है, क्योंकि अकेले जब करना बहुत खतरनाक, हरिदास ठाकुर की हम नकल तो नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से कई लोग अकेले जा के जब करते हैं, कोई वृंदावन जाता है, कोई राधा कुंड जाता है, या कोई कमरे में बैठ कर जब करना चाहता है भक्तों के संग को छोड़ के। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं खराटे की आवाज आती है, हरि नाम तो सुनाई नहीं देता है, या खराटों की आवाज आती है, या बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है कि चारों तरफ शांति छा गई, कमरे से कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो अकेले में जप करना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और प्रारंभिक भक्तों को तो करना ही नहीं चाहिए अकेले में जप। जैसे सरल सा उदाहरण है, देखिए पक्षी समाज में भी जब पक्षियों को उड़ाया जाता है तो उनके माता पिता जो होते हैं अपने पक्षियों को जो छोटे होते हैं उनको साथ लेके उड़ाते हैं। आपने झुंड में उड़ते हुए देखा हो, है कि नहीं, तो झुंड में होता हो देखा होगा, उड़ते हुए देखा होगा। तो उस तरह से हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग अभी इस मार्ग में बहुत छोटे हैं, नए हैं, और अपने को कभी पुराना सोचना नहीं चाहिए हमें। तो इससे क्या होगा, हमेशा हम लोग सतर्क रहेंगे। और यही बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में, भक्ति के मार्ग में, कि हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा हमें ये सोचना है कि अभी मैं नया हूं। जैसे हम सोचने लगते हैं कि हम पुराने हो चुके हैं, अब हम अकेले में जाके जप कर सकते हैं, तो फिर खतरा आया, फिर माया पकड़ लेगी। हरदास ठाकुर गुफा में अकेले जप कर रहे थे, माया देवी वहां पहुंच गई, लेकिन क्योंकि वो हरदास ठाकुर थे इसलिए माया देवी परास्त हो गई। माया देवी स्वयं परीक्षा लेने के लिए आए, हरदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आए, है कि नहीं? अगर आपके सामने माया देवी आ जाए परीक्षा लेने, तो फिर क्या होगा? आप तो माला वाला सब छोड़ देंगे। नहीं, माया देवी की प्रतिनिधि जो है संसार में पृथ्वी में, वही बहुत खतरनाक है। साक्षात माया देवी आए थे हरदास ठाकुर के सामने, एजेंट को नहीं भेजा उन्होंने, माया देवी स्वयं आए और 3 दिन लगातार आते रहे, लेकिन बाद में हरदास ठाकुर की शिष्या बन गई। वो हार गई, उन्होंने कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन आपका तो मन पूरा हरिनाम में लगा हुआ है। उनको हरिनाम में इतना आनंद आ रहा था कि उन्होंने कहा क्या है, कौन आया है? उन्होंने कहा मेरी अभी संख्या पूरी नहीं हुई है और प्रत्येक मास मैंने व्रत लिया है कि 1 करोड़ नाम मैं लूंगा प्रत्येक मास, तो इस वजह से मुझे वो संख्या पूरी करनी है, तो आप मुझे वो संख्या पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन वो जब करते जाते बोलते अभी संख्या पूरी नहीं हुई, आप कल आना, और दूसरे दिन आए फिर बोलते कल आना, फिर आके मैं खुद ही हार गया। वो खुद प्रभावित हो गई, बोलते आपके हरिनाम से मेरी चेतनाएं का सुधार हो गया। वैश्य को भी जो भेजा था वो रामचंद्र खान ने, तो वो भी ऐसे 3 दिन के लिए लगातार आए थे, वो वैश्य बदल गई। और वैश्य जो है 3रे दिन बोलते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया और मेरी दुर्बुद्धि थी, मुझे तो उस रामचंद्र ने भेजा था, खान ने भेजा था और आपको बदनाम करने के लिए, लेकिन अब मेरा ही हृदय बदल गया है, तो मैं सर्वस्व त्याग कर आपकी शरण में आ गई हूँ, मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं आज के बाद कोई पाप कार्य में नहीं लगना। वो हरदास ठाकुर की शिष्या बन गई और वो भी 3 लाख नाम लेने लगी। हरदास ठाकुर ने कहा कि तुलसी महारानी की परिक्रमा करो और परिक्रमा करने के बाद ये हरिनाम लेना शुरू करो आज से। तो हरिदास ठाकुर की शिष्या थी वो भी 3 लाख नाम लेने लगे। तो इस प्रकार ये उत्तम वैष्णव शुद्ध भक्तों से जब हम हरिनाम सुनते हैं ये लाभ मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी का हम कैसे चलाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद देखिए उस हरे कृष्णा कीर्तन धुन में कह रहे हैं, जो आपने सुना होगा, जो चैंटिंग का प्रभुपाद कीर्तन का प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तब चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र मस्ट बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी, है कि नहीं? हरिनाम में पूरी शक्ति है, हरिनाम आप किसी भी सुने लाभ तो मिलेगा आपको, लेकिन शुद्ध भक्तों से सुनने का लाभ मिल जाए, जैसे कि प्रभुपाद से सुनने का लाभ मिल जाए, या ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव से हरिनाम सुनने का लाभ मिल जाए, तो उसका बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है हमारी चेतना में। तो इसलिए प्रभुपाद की चैंटिंग के साथ हमें जप करना चाहिए, या फिर सुलती महारानी के समक्ष बैठ के जप करना चाहिए। हमें सहारे की आवश्यकता है, हमें हमेशा सोचना चाहिए, हमें निर्भर रहना चाहिए। हरिनाम लेते वक्त हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम बिना भक्तों के जब करेंगे तो खतरे में रहेंगे, अकेले होंगे तो खतरा है। जैसे टेंपल हॉल है कि कुछ लोग परिक्रमा मार्ग में चले गए अकेले, वो वहां जाके सो गए, कुछ लोग बाहर चले गए आंगन में, वहां जाके सो गए। इसी तरह से आप घर में आपने जप का स्थान बनाया फिर कमरे में चले गए, आपको लगा चलो ठीक है थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है ना, थोड़ा बैठ के जप कर लूँ, बेड में बैठ के और पीछे तकिया लगा लिया आपने, थोड़ा चैंटिंग कर ले, क्योंकि आपने सुना है खाए थे सोए थे यथाथाता नाम लोए, खाए थे सोते आप हरिनाम ले सकते हैं, तो ऐसे सोचते हुए आप बैठ के जप करने लगे। पहले तो आप सीधे बैठे, फिर पाँव फैलाए आपने, पाँव फैलाने के बाद फिर धीरे धीरे कमर आपके नीचे हुई, फिर पूरी तरह से लेटे, फिर आंखें बंद हो गई, फिर माला किधर आप किधर पता भी नहीं चला कहाँ। तो इस तरह से ये खतरा है, हमेशा हमें डर रहना चाहिए, हमें डर रहना चाहिए कि हम अकेले होंगे तो हमेशा खतरे में रहेंगे, माया से हमें डर होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है भक्तों के संग में रहकर जप करना, और घर पे हैं तो प्रभुपाद जी का कैसेट चलाइए और तुलसी महारानी के समक्ष बैठ के जप करिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद क्या कह रहे हैं देखिए, वी हैव टू फॉलो द ग्रेट पर्सनैलिटी हरिदास ठाकुर, ही वॉज चैंटिंग वेरी लाउडली Chaitanya Mahaprabhu chanted very loudly. So what more evidence do you want? My Guru Maharaj chanted loudly. We are chanting loudly. तो हमें ये नहीं देखना है कि ये भक्त ने ऐसा कह दिया, प्रभु जी हमें इस भक्त ने तो ये बताया, हमें तो इस भक्त ने बताया। हम कनिष्ठ भक्तों के पदचिन्हों पर नहीं चलना है। कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी शास्त्र में कि वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द नियोफाइट्स। कहीं लिखा है? हर शास्त्र बोल रहा है वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य। यह बोला गया महाजनो ये न गथा सपंता, महाजन जैसे कर गए वैसे करना है हमें। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कनिष्ठ भक्त जैसे कर गए वैसे करना है, ना? तो इसलिए हमारे आचार्य लोग, गुरुजन, प्रभुपाद या पूर्ववर्ती आचार्य लोग जैसा हमें सिखा के गए किस तरह से जप करना चाहिए, तो उस तरह से हमें जप करना चाहिए। व्हाइल द बॉडी इज फिट देयर फॉर व्हाई शुड वी नॉट चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड लाउडली एंड डिस्टिंक्टली। इफ वन डस सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इवन एट द टाइम ऑफ डेथ ही विल बी प्रॉपरली एबल टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विद लव एंड फेथ। कहने का तात्पर्य यह है कि अभ्यास है, जो हमारी साधना होगी वो हमारा साध्य होगा। जितनी कमजोर आपकी साधना होगी और अंत में वैसे ही आपको फल मिलेगा। यानी कि हमारे भजन का, हमारी साधना का पता चलेगा हमें, परीक्षा का फल का मिलेगा मृत्यु के समय। उस समय उस दिन हमें पता चलेगा कि हमने कैसे भजन किया था, कैसे हमने साधना की थी, उस हमें परिणाम मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमें सावधानी से, अगर हम लोग अभ्यास करेंगे बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, गीता में स्वयं भगवान बोल रहे हैं इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड। तो पूरे जीवन भर जिसने साधना अच्छी की है, एक जगह बट के जप किया है, तो वो अंतकाल में भी उस तरह से जप कर पाए। लेकिन जीवन भर जो लुढ़कता हुआ जप कर रहा है या सोते हुए जप कर रहा है या फिर जप ही नहीं कर रहा है, तो अंतकाल में कैसे नाम ले पाएगा? संभव ही नहीं है, है ना? तो जिस प्रकार की साधना होगी उसी तरह का साध्य होगा। जो आपने अभ्यास किया है उसी प्रकार का फल भी मिलेगा। तो इसलिए बहुत बहुत साधारण है, क्योंकि हम नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, वो सब अच्छी बात है, लेकिन सब शास्त्रों का मर्म तो हरि नाम लेना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। तो इसलिए हरि नाम पर उतना जोर दिया जाता है। और साथ में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी संख्या पूर्वक जप करते थे, है ना? तो यहाँ पर दो उदाहरण मिलते हैं, एक तो चैतन्य चंद्रामृत से और साथ में चैतन्य भागवत से, मध्यखंड से ये बताया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भी जो है संख्या पूर्वक जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु चैंट हरे कृष्ण महामंत्र लाउड वॉइस द होली नेम डांसिंग ऑन हिज टंग as he counts the number of recitations with his effulgent hand, chanting the Hare Krishna Maha Mantra's holy names, own holy names which bring auspicious to the world, Lord Gauranga's hand trembles with love as he touches a knotted string about his waist to count the number of names. तो यहाँ पर उन्हें knot बनाया हुआ है, अपने कमर में बांध के रखा है और उससे वो मतलब संख्या गिन रहे हैं। और बाद में हमारे आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्य ने ये हमें विधि बताई है कि काउंटर हमारे पास होना चाहिए कि संख्या पूर्वक हम लोग जप कर रहे हैं, संख्या हमारी पूरी हो रही है नहीं हो रही है, इसका साक्षी कौन है? ये साक्षी, इसको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। और प्रत्येक दिन भगवान देखते हैं हमने संख्या पूरी की है कि नहीं की है, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। आपने कितने नाम ले लिए हैं पिछले एक साल में, दो साल में, या तीन साल में, या बीस साल में, या तीस साल में, इस सब का रिकॉर्ड कृष्ण के पास कितनी संख्या हो चुकी है ये कृष्ण जानते हैं। हमेशा याद हो या ना हो, लेकिन कृष्ण को जरूर याद है और ये सब काउंट हो रहा है। और सिर्फ वो क्वांटिटी नहीं काउंट कर रहे, वो क्वालिटी भी काउंट कर रहे हैं। क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन शुरू में क्वांटिटी पे ध्यान रखना चाहिए। कोई पूछेगा अरे ये क्या बोल दिया आपने, हमें तो क्वालिटी बताया था, आपने क्वांटिटी भी बता दिया। तो प्रभुपाल ने जगह बताया है क्वांटिटी से क्वालिटी आती है, लेकिन हम शुरू में क्वालिटी पे जोर देंगे तो फिर क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं। और क्वांटिटी जितनी ज़्यादा हम बढ़ाने की प्रयास करेंगे तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं क्वालिटी होगी। जैसे मान लीजिए आपने दो माला की और आपको एक बार मौका मिला शुद्ध नाम लेने का या नामाभास, आपको एक बार नामाभास हुआ दो माला करते, और अगर आप दस माला कर रहे हैं तो संभावना ज़्यादा है, 16 वाला कर रहे हैं और संभावना ज्यादा है, आप समझ रहे इस बात को। तो क्वांटिटी से क्वालिटी आए, क्वांटिटी से क्वालिटी आए, लेकिन सोचे कि क्वालिटी से क्वांटिटी आएगा वो प्रारंभ में ऐसा नहीं होगा। प्रारंभ में इसलिए हमें जोर देना चाहिए कि संख्या को बढ़ाया जाए। जैसे दो माला कोई करता है उसको धीरे धीरे प्रोत्साहित करें कि वो चार माला करें, फिर वो छह माला करें, क्वालिटी पे इतनी चिंता ना करें, क्वालिटी सिर्फ इतनी हो कि वो ध्यानपूर्वक सुने और जोर से उच्चारण करें, बस उससे ज्यादा और क्वालिटी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। ये थोड़ा कि उसको नाम में रुचि आ जाएगी और भाव के स्थिति में पहुंच जाएगा एकदम से। शुरू में तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तो शुरू में सिर्फ यही बताना है क्वालिटी के लिए कि आप अटेंटिवली उसको सुने और उच्चारण करें, क्वांटिटी पे जोर देना है। तो क्वांटिटी से संभावना ज्यादा है कि क्वालिटी भी होगा। तो यहां पर बड़ा अच्छा बताया है इस प्रकार संख्या पूर्व, इसलिए हमारे आचार्य लोग बोल गए। प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद जो 16 वाला का आपने जब निर्धारित किया है कहीं शास्त्र में दिया क्या? प्रभुपाद ने कहा नहीं, प्रभुपाद ने कहा शास्त्र में नहीं दिया है। तो फिर पूछे कि प्रभुपाद फिर आपने कैसे 16 वाला किया निर्धारित? प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम इतना तो करें इसलिए मैंने किया, कम से कम ये भक्त लोग कम से कम 16 वाला का तो जब करें इसलिए मैंने कम से कम 16 वाला कहा है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मिनिमम 16 राउंड्स बोला है कि कम से कम ये 16 वाला का जब तो करें। और प्रभुपाद ने कहा हाँ ये शास्त्र में जरूर बताया है संख्या पूर्वक, जैसे षड्गु स्वामी अष्टकम ही बता रहे हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नाम गान और प्रणाम ये सब संख्या पूर्वक होने चाहिए, केवल जब ही नहीं, नाम गान नति भी संख्या पूर्वक, प्रणाम भी संख्या पूर्वक होने चाहिए। रोज जितना प्रणाम करते हैं उतना प्रणाम भी अगले दिन करने का प्रयास करना चाहिए। वैदिक भक्ति का मतलब यही है, वैदिक भक्ति का मतलब है कि हर चीज काउंट होना चाहिए, हर चीज का काउंटिंग होना चाहिए। प्रत्येक दिन मैं एक आरती तो करूंगा, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रत्येक दिन एक आरती जरूर करेंगे कहीं भी हो। मान लीजिए मंगल आरती नहीं मिस हो गया उनका, मंगल आरती के समय कहीं फ्लाइट में या मंगल आरती में नहीं पहुंचे तो वो उसके तुलसी आरती जरूर करेंगे। तुलसी आरती में नहीं कर पाए, ठीक है मंगल आरती कर ली उन्होंने, अब तुलसी आरती के समय थोड़ा लेट आए महाराज जल डालने के लिए आए, तो मंगल आरती तो हो गई तो एक आरती होगा अगर, लेकिन मंगल आरती भी मिस हुई है तुलसी आरती मिस हो गई तो गुरु पूजा करेंगे। तो वो उनका एक नियम है कि एक आरती जरूर करना करना। आप वृंदावन चले जाओ, मायापुर चले जाओ, बम्बई चले जाए या वेस्ट में चले जाए, वो एक आरती जरूर करेंगे। तो ये संख्या पूर्वक, और संख्या पूर्वक प्रार्थनाएं बोलना, ये भी हमने देखा महाराज के साथ जाते हुए, वो कार में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे या परिक्रमा में होंगे, वो सारी प्रार्थनाएं बोलेंगे महाराज, गौर आरती भी गाएंगे महाराज, 7 बज गए गौर आरती का महाराज बोलेंगे, और सुबह 7:30 का टाइम होगा, ट्रेन में भी होंगे महाराज सामने पीट बैग रखेंगे, प्रभुपाद का फोटो होगा, महाराज बोलेंगे गुरु पूजा का होगा। जैसे हॉस्पिटल में महाराज थे तो जैसे ही सुबह उठे और जैसे महाराज आंखें खोली तो एक दिन पहले एंजियोप्लास्टी किया था, तो अगले दिन जैसे ही सुबह उठे तो जैसे उठे कृष्णप्रिया प्रभुपाद बैठे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु आप मंगल आरती गाओ, मैं पीछे दोहराता हूँ, महाराज लेटे लेटे बोल। तो ये इसको कहते हैं आचार्य, इसलिए बोला हमारे शास्त्र वन मस्ट फॉलो दी फुटस्टेप्स ऑफ आचार्यस, है ना। तो इस तरह से हम लोग जल्दी प्रगति करेंगे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृतो, तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा जो है फिर विकास, ऐसे संख्या पूर्वक करने से हमारा प्रोग्रेस बहुत स्टडी होता है। ये माइंड को रेगुलेट करने का तरीका है। कोई पूछ सकता है कि मैं निष्ठा के स्तर पर कैसे पहुंचूं, तो ये तरीका है निष्ठा के स्तर पर पहुंचने का। सबको संख्या पूर्वक कर दो, आप 1 घंटा में पढ़ूंगा, संख्या पूर्वक है वो भी संख्या है, 1 घंटा पढ़ना, इतने घंटे में सेवा करूंगा व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल सेवा करूंगा, इतने घंटे मैं प्रार्थनाएं बोलूंगा, इतनी प्रार्थनाएं बोलूंगा प्रातः काल उठ के। कुछ लोग बेस में रहते हैं, कुछ लोग घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो आप जितनी प्रार्थनाएं हैं सुबह जो प्रभुपाद ने बताई हैं वो सारी प्रार्थनाएं बोल लें। या तो लंबा कार्यक्रम होता है 4:30 से 9 बजे, तो घर में इतना समय तो नहीं मिलेगा आपको, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, तो 1 घंटे में सारे प्रार्थनाएं बोले, प्रार्थनाएं सारी बोले लेकिन, तो वो एक नियम बनाना पड़ेगा संख्या पूर्वक। संख्या पूर्वक जब कुछ करने लगेंगे तो भगवान से बहुत आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी प्रगति आगे बढ़ने लगी। अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो कम नहीं करना चाहिए संख्या। जैसे मान लीजिए कि आप 64 माला नहीं कर पा रहे लेकिन 16 माला तो करना है, यानी कि हम 8 माला में आ जाए 16 माला करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड है कम से कम उसको मेंटेन करें। अगर हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कोई अगर 8 घंटे 10 घंटे नहीं कर सकता सेवा हफ्ते में, अगर अपना टाइम नहीं दे सकते, दो घंटे का समय मान लें, 3 घंटे का समय मान लें, लेकिन उसको एक फिक्स स्टडी रखें। इसी तरह से डीटी वर्षी भी है, कोई घर में अगर मंदिर में आकर नहीं कर सकता डीटी वर्ष, तो घर में पूजा का रखें, पूजा सेवा का आप रखें, तो एक बार आप ऑल्टर की सेवा, ऑल्टर में आप राधा कृष्ण का पिक्चर हो, पंचतत्व का हो, नरसिंह भगवान का हो, षड गोस्वामी का, गुरु परंपरा का, तो उनका आप एक बार आरती जरूर करें पूरे दिन में। जब भी आप खाते हैं तो भोग लगाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए सब में, उसमें भी संख्या पूर्वक होनी चाहिए कि मैं दिन में एक बार आरती करूंगा। आप सामने बोलें, पिक्चर के सामने, भगवान के सामने बोलें, ऑल्टर के सामने आप ये बोलें कि मैं रोज एक आरती करूंगा, आपके मैं रोज आरती एक आरती करने का प्रयास करूंगा, फिर वैसा करें। तो ये कमिटमेंट हमें शो करना है, और इसके लिए हमें क्या करना रहना पड़ेगा, उत्साह निश्चया धैर्य एंथुजियाज्म पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। डिटर्मिनेशन की कमी होने की वजह से हमारी साधना कमजोर रहती है, जितनी साधना कमजोर रहेगी उतनी सेवा भी कमजोर रहेगी, और इसका मतलब उसका परिणाम भी कमजोर होगा। और परिणाम क्या है, परिणाम एक्सटर्नल नहीं है, परिणाम इंटरनल है, कृष्णा कॉन्शियस होना। आपका नाम के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, श्रवण कीर्तन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, और हमारे अंदर वैष्णव के गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 26 गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, कि 26 क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इंट्रोस्पेक्टिव होना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मन्वेषण होना बहुत जरूरी है। अगर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग हमेशा खतरे में रहेंगे। मैकेनिकली अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में चलते रहेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे हम। जैसे कि मैकेनिकल का मतलब ये है कि सिग्नल पर अगर रेड सिग्नल, रेड लाइट आता है सिग्नल पे, तो वहां रुक जाता व्यक्ति, हरी बत्ती आती तो चल देते, तो बस ऐसे ही घूमते रहते पूरे शहर में। गांव से कोई आया पहली बार, बेचारा जानता नहीं था शहर के रूल्स क्या है, उसने देखा सब लोग रुक रहे हैं लाल बत्ती में, रुका, उसने देखा कि हरी बत्ती सब चल रहे हैं, चला, वो ऐसे घूमता रहा बेचारा पूरे दिन, लेकिन ढूंढ नहीं पाया कि कहां जाना उसको। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए हमारी पहली साधना भक्ति जो है, इस तरह की साधना होगी तो कभी फल नहीं प्राप्त हो। लक्ष्य को ध्यान रखते हुए हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, एकादशी का दिन इंट्रोस्पेक्शन के लिए होता है। ठाकुर भक्तिवेदांत ने बताया कि हमने जो कुछ किया है वो हमें एकादशी के दिन हमें उसका अन्वेषण करना चाहिए, आत्मअन्वेषण करना चाहिए कि पिछले दिनों में, 15 दिनों में या जो भी है, हमारे फोर्टनाइट में हमारा क्या प्रोग्रेस हुआ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमने एडवांसमेंट किया। एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए हमें, प्रत्येक भक्त का एक चेकलिस्ट होना चाहिए, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे रहा, मेरा अध्ययन कैसे रहा, पिछले हफ्ते मैंने कितने घंटे अध्ययन किया। जैसे इवन काउंसलर सिस्टम में हम साधना चार्ट मेंटेन करते हैं और दिखाते हैं, वो दिखाने से पहले खुद देख लें तो 99% खुद ही सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, है कि नहीं, और खुद देखकर खुद सुधारने का प्रयास करें। पहले हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम सुधरना चाहते हैं, फिर आप जा सकते हैं किसी के पास गाइडेंस लेने के लिए। लेकिन खुद ही अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है और सीधा हम चार्ट लेके पहुंच गए तो वो तो फिर एक बहुत ही ज्यादा रुग्ण अवस्था है। तो हमें खुद भी प्रयास करना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी है, हम खुद एसेस करें अपने आप। हो सकता है कई बार आपके गाइड अवेलेबल नहीं है, काउंसलर अवेलेबल नहीं है, तो उस समय क्या करेंगे फिर आप, तो उस समय ये करना है। तो हमें देखना है कि हम मैंने पढ़ाई की नहीं की पिछले हफ्ते, हमारा जब ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कितने दिन मेरा जब ठीक हुआ, किन कारणों से मेरा जब ठीक नहीं हुआ, क्या मैं एक दिन पहले रात को लेट सोया था और कई बार समस्याएं आती हैं तो मन मेरा विचलित हो जाता है, ये इस कारण से तो नहीं है कि मैं ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूं। क्या भक्तों की निंदा में ज्यादा करने लगा हूं या कम करने लगा हूं, वैश्य अपराध कम करता हूं या ज्यादा कर रहा हूं, सहनशीलता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, नम्रता बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, पवित्रता बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, चार नियम तो कहीं तोड़ नहीं रहा मैं। तो इस प्रकार से स्ट्रिक्टली देखिए होता क्या है, जनरली हम दूसरों के ऊपर तो शक्ति बरतते हैं लेकिन खुद होते हैं लूज, लेकिन वास्तव में कैसा होना चाहिए, खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा, अपने आप प्रभाव पड़ेगा दूसरों के ऊपर, लेकिन खुद ही ढीले रहेंगे और दूसरों के ऊपर शक्ति दिखाएंगे तो वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। शुरू में तो अच्छा लगेगा देखने में, जैसे कई वक्ता होते हैं बड़े बड़े, वो सुंदर सुंदर श्लोक सुनाते हैं, संगीतमय भागवत प्रवचन होता है, कई लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे से आचरण देखते हैं ऐसे वक्ता का तो लोग भाग जाते हैं। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना है और संख्या पूर्वक हमें जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, इहा जप किया सबे कोरिया निर्बंध, कंटिन्यू चैंटिंग जप ऑफ दिस महामंत्र अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ टाइम्स। तो महाप्रभु ने भी आदेश दिया है। और साथ में गौरंग महाप्रभु क्या बोले, आपने सबारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुनो हरीश, प्लीज बी प्लीज टू हियर द महामंत्र फ्रॉम मी, वन कैन अचीव ऑल परफेक्शन बाय दिस चैंटिंग, देयर इज नो रूल इन दिस चैंटिंग अदर देन इट शुड बी कंटिन्यूड एट एवरी मोमेंट, यानी कि कीर्तनीय सदा हरि। कह लो ये महामंत्र कहा जब गिया सवे कोरिया, निर्बंध कहे हुए थे सर्व सिद्धि हुए सवा। Everyone should chant the holy name of the Lord with fixed determination by rigidly keeping the schedule count, nirbandha of the holy name. This will award one all perfection. Some translators say that nirbandha means 64 rounds. तो महाप्रभु के समय में उनके जितने भी परिकर थे वो कम से कम 100,000 नाम लेते थे, 64 rounds जप करते। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने भी अपने समय में शिष्यों को 64 माला करने के लिए कहा था। तो हमें तो इस समय लगता है असंभव है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए संभव है। लक्षेश्वर बोली कारे प्रतिदिन लक्ष्य नाम यही ग्रहण करे, सही जनेर नाम अमी बोली लक्षेश्वर तथा भिक्षा अमार ना जाए अन्य घर। तो बोलते हैं आप जानते हैं कौन है लक्षेश्वर, महाप्रभु पूछ रहे हैं आप जानते हो कि कौन लक्षेश्वर है, यानी कि वो जो 100,000 नाम लेता है रोज दिन, ऐसे व्यक्ति को मैं लक्षेश्वर कहता हूं और वो व्यक्ति मुझे भोजन दे सकता है, यानी कि मैं उसी के घर प्रसाद ग्रहण करूंगा जो 100,000 नाम देता है, मैं और किसी के घर नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु गृहस्थ भक्तों के घर जाते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाला था कि उसी घर में जाऊंगा मैं जो 100,000 नाम लेता हूं रोज। तो उनके सारे भक्त लोग 100,000 नाम लेते थे इस उद्देश्य से कि महाप्रभु हमारे घर में भी आए। तो इस प्रकार अपने आचरण के द्वारा हमें लोगों को प्रभावित करना है। तो इस प्रकार प्रभुपाल ने देखा लेकिन कि कलयुग में बहुत मुश्किल है, तो प्रभुपाल ने कृपा करके हमारे लिए कम से कम 16 माला किया है। लेकिन जैसे जैसे साल बीते जाएंगे और जैसे जैसे हम वृद्ध अवस्था के करीब आएंगे तो हमें ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम 64 माला तक पहुँचे, यानी कि जीवन भर हम 16 माला में अटके रहें। और हाँ ये बात जरूरी है साथ में कि हमें निरंतर रूप से गुरु से परामर्श करना चाहिए, गुरु से अनुमति लेनी चाहिए संख्या बढ़ाने से पहले। मतलब कितने सदा हरि तो है लेकिन संख्या अगर बांधना है, 16 माला से ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु से अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे मान लीजिए आपकी 16 माला हो गई और यहां से आप जा रहे हैं भवाना रोड अपने कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप पूरे रास्ते में जब कर सकते हैं तो उसको कहेंगे कितने सदा हरि। लेकिन संख्या बांधना वो अलग चीज है। जैसे आपने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं रोज 25 माला करूंगा, क्यों एकादशी के दिन ही क्यों करूं, मैं रोज कर सकता हूं, जब एकादशी के दिन कर सकता हूं तो रोज कर सकता हूं, तो रोज मैं 25 माला करूंगा। ऐसे आपने खुद ही अपने आप ही संख्या बांध ली, गुरु से पूछा नहीं, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन खाली समय में जब आप हरिनाम लेते हैं तो उसके लिए गुरु कभी मना नहीं करेंगे। यहाँ से आप बस स्टॉप जा रहे हैं, यहाँ से आप ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ से कहीं घर जा रहे हैं अपने वापस, है ना, यहाँ से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, माला करते हुए जाएं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेली रूटीन संख्या अगर कोई एस्टैब्लिश करना है, नई संख्या एस्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए गुरु से पूछना बहुत जरूरी है। हमारे एक जैसे गुरु महाराज के शिष्य जानते होंगे आप, वो मॉस्को में रहते हैं, अशला प्रभु, जो हर एकादशी में 192 माला का जप करते हैं, महाराज के शिष्य हैं। तो एक दिन पहले जैसे कल रात को 1 बजे 1:30 बजे शुरू करते हैं, तो आज शाम को 6:30 बजे तक पूरा करते हैं, 192 राउंड्स हर एकादशी में करते हो। तो मारे ने उनको अनुमति दी हुई, मारे से पूछ के करते हो। तो लास्ट टाइम मारा कह रहे थे कि वो मुझसे अब अनुमति लेना चाहता है 64 माला करने की, मारा कह रहे थे। तो यानी कि हालांकि वो 192 माला करते हैं एकादशी में, फिर भी वो मारा से अनुमति लेना चाहते हैं कि रोज 64 माला करें। और वो मॉस्को में पूरा एक जोन देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कहने करती है कि ये बहुत जरूरी है, तभी जो है नाम हमें लाभ देगा, क्योंकि हम लोग नाम गुरु परंपरा के माध्यम से लेते हैं। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। समय क्या हो गया? हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
अपराध
माना जाएगा ना? हाँ,
तो भी कई बार जैसे माला कर रहे हैं हरे कृष्णा, तो कई बार थोड़ी देर बाद ओम हरे कृष्णा ऐसे निकल आता, ओम साथ लग जाता।
नहीं, हरे कृष्णा का जब करते तो उसमें ओम शामिल है, अलग से जब करने की आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र में ओम शब्द अपने आप आ जाता है।
नहीं, जैसे कई बार ना हम जैसे कर रहे हैं हरे कृष्णा,
वो ठीक,
थोड़ी देर बाद ओम हरे कृष्णा
नहीं, वो आवश्यक नहीं है। और हमारे आचार्य ने इसके लिए कुछ कहा नहीं है करने के लिए, तो इसलिए हम नहीं करते उच्चारण। हालांकि कलिशंत्र उपनिषद में ऐसा दिया है, ओम करके लिखा है, फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा दिया हुआ है। क्योंकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू होता है, लेकिन यहाँ ओम जो है वो सूचित करता है राधा कृष्ण को। ओम शब्द के अगर आप देखें विस्तार करें, जैसे प्रभुपाद ने बताया है, आ का मतलब बताया है भगवान, स्वयं भगवान, औ का मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, और अम का मतलब जीव तटस्था शक्ति, तो ये तीनों को मिला के ओम बनता है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो तो वैसे ही राधा कृष्ण का नाम ले ही रहा है, तो उसमें ओम आ जाता है। हाँ हाँ जी,
तीन पॉइंट आपने बताए थे जो कि साधना,
उत्साह, निश्चय, धैर्य, एंथुजियाज्म, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये तो मैं नहीं बता रहा, रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ति षडभीर भक्ति प्रसद, यदि 6 बताया उन्होंने। पेशेंस भी चैंटिंग से आएगा, चैंटिंग जितना अटेंटिवली करेंगे उतना आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, जितना आपका टॉलरेंस बढ़ेगा उतनी ह्यूमिलिटी बढ़ेगी। नम्रता बढ़ाने का तरीका है सहन करना, सहन करते जाओ नम्रता अपने आप बढ़ती जाएगी, जितना सहन कम करोगे उतनी नम्रता घटेगी, उतना अहंकार बढ़ेगा। और जितना नम्रता बढ़ रही है इसका मतलब उतने ही आपकी स्थिति स्पिरिचुअल होती जा रही है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आप पहुंचते जा रहे हो। और जितना अहंकार बढ़ रहा है उतना हमारा मेटेरियलिज्म बढ़ रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचने का जो सबसे सटल लेयर है फॉल्स ईगो है, उसको क्रॉस कर दिया तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए। तो अगर आपका फॉल्स ईगो क्रश हो रहा है और रियल ईगो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंच गए। और गुरु उसी के ऊपर कार्य करते हैं, गुरु शिष्य के साथ जो समय देते हैं उसके फॉल्स ईगो पर काम करते हैं, शिष्य के फॉल्स ईगो बिल्कुल बिल्कुल चकनाचूर कर देते हैं अगर शिष्य चाहता है। शिष्य अगर शरणागत है तो शिष्य को बिल्कुल अहंकार रहित कर देंगे और शिष्य भी फिर वैसे ही स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, अहंकार शून्य हो जाएगा।
कितनी
आइडियल्स भी 7.5 मिनट है, 7.5-8 मिनट के बीच में फास्ट कर सकते हैं आप, फास्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे शब्द पूरे प्रोनाउंस होने चाहिए, रेसिटेशन पूरा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन पूरा होना चाहिए, फास्ट कर सकते हैं। और अगर आप डाउट है तो आप सुन के आप उसको क्लियर कर लें कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। कई बार लगता है कि फास्ट तो हो रहा है, सही भी हो रहा है, लेकिन आप फिर भी आप अगर सुन लें तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारा और पता भी चल जाएगा कहाँ गलत कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उसी वजह से अच्छा है कि हम लोग एक दो आध बार रिकॉर्ड कर लें। हम सबका रिकॉर्ड तो करते ही हैं, वो खुद का चैंटिंग भी रिकॉर्ड कर लें तो कुछ गलती नहीं है उसमें, है कि नहीं? तो हरिनाम ही है और वो खुद के सुधार के लिए। लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, कीर्तन रिकॉर्ड करते हैं, चैंटिंग रिकॉर्ड कर देखें उसको फिर सुने, और ये नहीं कि एक एक मिनट के लिए दो मिनट के लिए, कंटिन्यूस आधा घंटा सुने आप तो आधे घंटे के अंदर पता चल जाएगा वेरिएशंस क्या आ रही हैं, कहीं स्पीड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कहीं प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बीच में कहीं सो गए जब करते हैं, वो सब सब पकड़ा जाएगा, वो सब पकड़ा जाएगा उसमें। फिर हमें चैंटिंग का स्टैंडर्ड बदल जाएगा, क्वालिटी बदल जाएगी। और हर महीने असेसमेंट करें या हर एकादशी में असेसमेंट करें, पिछली एकादशी में एक बार टेस्ट हो गया और आज एकादशी में फिर से टेस्ट कर लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्वालिटी का डिफरेंस पता चल जाएगा। हाँ वो भी है, इस प्रकार हम लोग और ध्यान से जब करने लगेंगे। हाँ नहीं वो भी ठीक है, तो उससे अच्छा है कि फिर हम लोग रोज रिकॉर्डिंग करें और किसी को बोल देंगे गुप्त रूप में रिकॉर्डिंग करें, मुझे पता ना चला। रिकॉर्डिंग जब हो तो किसी को बोल के रखें कि मुझे मत बताना कब रिकॉर्ड करो और पीछे मेरे सामने मत रखना, छुप के रिकॉर्डिंग करना, चादर के नीचे रखा हुआ माइक और आपका चैंटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, बस उससे हम पकड़े जाएंगे। तो ये सेकेंडरी बात है, लेकिन मेन पॉइंट ये हम बताना चाह रहे थे कि सुने रिकॉर्डिंग करके तो अच्छा है, उससे क्या है कि वह पता चल जाएगा हमारा स्टैंडर्ड। वो तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम लोग ECG निकालते हैं अपना हार्ट का, उसमें सारे वेरिएशन होते हैं, ऐसे ऐसे चलता है वो, यानी हमारे चैंटिंग भी वैसे ही चलता है शुरू में। तो इसको हमें इससे घबराना नहीं है, मेन पॉइंट है कि चैंटिंग संख्या पूरी करनी है। शुरू हमने ये बोला था कि हम लोग क्वालिटी की ज़्यादा चिंता ना करें, हम क्वांटिटी की चिंता करें, 16 राउंड्स पूरे होने चाहिए डेली, वो करते रहिए धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। हाँ जैसे जैसे आप हरिनाम सुनते जाएंगे, चैंटिंग करते जाएंगे, आपके जो संस्कार हैं सारे खत्म होते जाएंगे, जितने भी बुरे संस्कार हैं मन के ऊपर जिसका प्रभाव है वो सारे संस्कार खत्म होते जाएंगे, और जितने माइंड के ऊपर इंप्रेशन हैं, बैड इंप्रेशन या सो कॉल्ड अच्छे इंप्रेशन हैं, वो जितने अधिक खत्म होते जाएंगे उतना आपका चैंटिंग अच्छा होता जाएगा। ये शाम तो अंतकतम पापाम जना नाम पुण्य कर्मना सद्वंद मोहन मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। भगवान गीता में यही कह रहे हैं कि दृढ़ व्रत होकर वही भजन कर सकता है जो समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा पा चुका है। प्रारब्ध भी जिसके कट गए वो फिर नामाभास के स्टेज पर पहुंच जाएगा। हमारे पाप और हमारे अनर्थ ही तो हमें ठीक से जप नहीं करने दे रहे, और उसका उपाय भी यही है, साधन भी यही है, साध्य भी यही हरिनाम। तो बार बार जप करने से क्या होगा कि वो संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे, वो वीक हो जाएगा बिल्कुल, उसकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और बाद में उखड़ जाएगा, और जब उखड़ जाएगा तो आपको नाम में रुचि आ जाएगी। तो समय लगता है इसमें, कुछ लोग ज़्यादा रोगी हैं, कुछ लोग कम रोगी हैं, कुछ लोगों की साधना पिछले जीवन में ज़्यादा रही है, कुछ लोगों की कम रही है, तो ये निर्भर करता है कि हमने कितनी भक्ति की पिछले जन्म में। नहीं फिर नाम अपराध नहीं होना चाहिए, नामाभास तो हो गया, जगन्नाथ जी को देखकर आप भावेभोर हो गए, पुरी में जाकर नाचे खूब 6 घंटे 7 घंटे, नाम का आभास हुआ आपको, या वृंदावन गए तो नाम धाम का आभास हुआ, है ना। तो लेकिन उसके बाद अगर नाम अपराध होता है तो फिर वैसे कुंजरा शौच और हाथी स्नान के बराबर है। हाँ और कोई नहीं, वो क्यों लगे, उन्होंने शिष्यों के लिए जिम्मेदारी ली है, सबके लिए नहीं ली है। क्या चीज? हाँ अभी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एक गुरु अवज्ञा है तो एक ही थोड़ा अपराध है, बहुत सारे अपराध, दस अपराध है।
नाम का फल तो तभी बोलते हैं ना,
ध्यान पूर्वक जप ना करना ये भी अपराध है, हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाना रखना ये भी अपराध है, साधु निंदा करना ये भी अपराध है, और गुरु का आश्रय लेकर दीक्षा से पहले अगर आश्रय ले लिया अवज्ञा करते हैं तब भी लगेगा। शेल्टर कि आप मेरे गुरु हैं, मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया और गुरु आज्ञा दे रहे हैं, आप मान नहीं रहे, गुरु अवज्ञा हो गए। गुरु अवज्ञा मतलब रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, भक्ति का जो पहला अंग क्या है, आदव गुरु पाद आश्रय, ये अंग भक्ति का पहला अंग बताया श्री कृष्ण, शिक्षा दीक्षादि शिक्षण नहीं बताया, वो दूसरा नंबर पर बताया, पहले आश्रय बताया। तो आश्रय लेते ही क्या होता है, फिर आगे का पालन करना पड़ेगा। आश्रय लेने का मतलब ये नहीं कि सो गए, आश्रय लेने का मतलब है आगे का पालन करना, उसमें अवज्ञा हो गई तो नाम अपराध लग जाए। महाराज को पूछने लगेगा, शिष्य को लगेगा, महाराज को क्यों लगेगा, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लिया हुआ है, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया किसी का। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, ये दवाई लीजिए आप, ये मेडिसिन है, ये डाइट है, अगर पेशेंट नहीं लेता तो डॉक्टर क्या कर सकता है उसमें? सबसे महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल लाइफ में एसोसिएशन। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला रूट कॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इवन इफ वन हैज डेवलप्ड लव फॉर कृष्णा स्टिल द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज मोस्ट एसेंशियल। महाप्रभु क्यों दक्षिण भारत जा रहे हैं, राम मंदिर आए से सुनने के लिए जा रहे हैं, महापुरुष स्वयं कृष्ण है लेकिन वो रामन वैसे सुनने के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो महापुरुष भक्त रूप में है, दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं हमें कि किसी भी अवस्था में भक्तों का संग जरूरी है, प्रेम भी मिल गया और कृष्ण का तब भी जरूरी है, इस अवस्था में तो बहुत ही जरूरी है। जैसे बच्चा होता ना तो सबसे पहले उसको क्रच में भेजते हैं, खेलने के लिए भेजते हैं, बच्चों के पास बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजते हैं, बच्चे को सहारे की आवश्यकता पड़ती है, सड़क पार करने के लिए बच्चा जो है पिता का हाथ पकड़ते हैं, पकड़ता है बच्चा, है कि नहीं? अकेला उसको छोड़ते नहीं गए बच्चे को। तो हमें अपने आप को बच्चा सोचना चाहिए हमेशा, स्पिरिचुअल लाइफ में हमें किसी ना किसी का हाथ पकड़ के रखना है, भक्तों के संग में रहना है, मेन पॉइंट ये है। और एक ऐसे भक्तों के संग में रहना जो गंभीर है भक्ति में, उत्साह निश्चय धैर्य ये सब उनमें गुण है, जिनमें अन्यों की निंदा से रहित है, गुरु की सेवा में तत्पर है, रूप गोस्वामी जैसे बता रहे हैं, तो तब हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से ये गुण आने लगेंगे। जैसे कि स्फटिक होता है, विश्वनाथ जी ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं साधु संघ का, स्फटिक होता है, क्रिस्टल जो होता है पास में जो रंग होगा उस रंग को खींच लेगा और वो लगेगा क्रिस्टल, ऐसा लगेगा कि ये रेड रंग का है या ब्लू रंग का है। तो इसी तरह से साधु संघ भी होता है, तो साधु संघ अगर पावरफुल हुआ तो उस साधु के जितने गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। साधु संघ का अर्थ है वास्तव में कि उस साधु में जो गुण है वो हमारे अंदर आने चाहिए, तब हम लोग वास्तव में साधु संघ किए। साधु संघ का मतलब ये नहीं कि हम उनके पांव के पास बैठे हैं, है ना, या उनका चेहरा ही देख रहे हैं सर बैठ के, वो भी ठीक है लेकिन उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। साधु संघ का लाभ ये है कि उस वैष्णव में जो गुण है वो हमारे अंदर आने चाहिए, उस वैष्णव अगर नम्रता है, सहनशीलता है, वो सब हमारे अंदर आना चाहिए, तब तो हमने उसका संग किया वास्तव में। नहीं तो हम बेकार उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कई लोग आते हैं, महाराज जी हम आपके दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने आए, हाँ आपको कोई प्रश्न है? नहीं बस महाराज जी आपका दर्शन करने आए हैं, और बताइए ठीक है सब कुछ? हाँ जी सब ठीक है, कुछ बोल ही रहे हो तो महाराज भी सोच रहे हैं किस लिए आया, कुछ समझ में नहीं आया, बस आपका दर्शन करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए प्रसाद लीजिए, महाराज बोलते। तो कहने का अर्थ यह है कि ये समय की बर्बादी है कि नहीं? वैष्णव के पास जाने का मतलब है तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। प्रभुपाद कह रहे हैं एक जगह पे कन्वर्सेशन में, शिष्य का कर्तव्य है वो जिज्ञासु रहे हमेशा। अगर वो गुरु से जिज्ञासा नहीं करेगा तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे करे? हम शिष्य होने के बाद, बनने के बाद हम कितनी बार गुरु के पास गए आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए? हम अपनी समस्या लेके जाते हैं सर, है कि नहीं? हम बोलते हैं कमरे में ये हो गया, घर में ये हो गया, आकाश में हो गया, पृथ्वी में हो गया, लेकिन कोई श्रेय उत्तम, जिसका मतलब है कि अल्टीमेट गोल जो है स्पिरिचुअल लाइफ का, कृष्ण प्रेम, उससे रिलेटेड हमारे कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इसलिए होता ही नहीं है। और क्योंकि हम जिज्ञासा नहीं करते हैं तो गुरु भी कुछ कहते नहीं। जिस शिष्य की कोई जिज्ञासा नहीं है तो गुरु सोचे इसके यहाँ जिज्ञासा नहीं है, है कि नहीं? और साथ में शास्त्रों ये बताया है जो शिष्य नहीं है गुरु को चाहिए कि उसको इंस्ट्रक्ट ना करें, कैसे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते भी नहीं है गुरु। तो शिष्य का मतलब ये है जो शासन के लिए तैयार है, जो अपने ऊपर शासन के लिए तैयार है वो शिष्य है, और इसलिए उसको जिज्ञासु रहना चाहिए कि महाराज मेरी चैंटिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है, जो प्रश्न हम यहाँ पूछ रहे हैं हमें गुरु से पूछना चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। और आप बोलेंगे कि समय नहीं है, समय उनके पास होता है, हमारे पास नहीं होता। अगर आप समय निकालेंगे, पूछेंगे कि महाराज मिलना चाहते हैं, कब मिल सकते हैं, तो फिर वो समय देंगे। फिर हम लोग प्रश्न लिख के जाएं, ठीक ठीक प्रश्न लिख के जाएं, कागज में लिख के जाएं ताकि भूल ना जाए उनके सामने, और वो प्रश्न का उत्तर लेकर आए, तब हमें मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं तो हम लोग ऐसे ही जीवन बीतता जाएगा, कुछ होगा नहीं। जितने प्रश्न पूछे, कई प्रकार के यहाँ प्रश्न पूछे गए, तो ऐसे प्रश्न गुरु से भी प्रश्न पूछने चाहिए, अपने पर्सनल क्वेश्चंस। तो जब ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि उत्तर मिलेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ पाए। इसका मतलब यह है कि अगर गुरु के आप शिष्य हैं तो गुरु में कितने सारे गुण हैं। गुरु हमारे नम्र हैं, गुरु हमारे सहनशील हैं, गुरु हमारे हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, गुरु हमेशा प्रचार में लगे रहते हैं, गुरु एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं, है ना? तो ये सारे गुण हमारे अंदर कहाँ आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने संग नहीं किया उनका ठीक से, हम उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। अगला अपना चेहरा दिखा गए या उनका उनका दर्शन करके क्या फायदा उसका? कोई लाभ नहीं है। साधु संघ का मतलब पूरा लाभ उठाना ना हमें उसका। तो लाभ उठाने का मतलब क्या है कि जो वो आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का पालन हो और शरणागति की भावना बढ़े तो श्रद्धा बढ़ेगी। जितने शरणागत होते जाएंगे उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, जितनी कम शरणागति होगी उतनी कम श्रद्धा होगी। लैक ऑफ सरेंडर मीन लैक ऑफ फेथ, ज्यादा सरेंडर मतलब ज्यादा फेथ। और सरेंडर का मतलब क्या है? जो वो कहते हैं वो करते जाए, उनके शासन में रहने के लिए तैयार रहना, उसको कहते हैं सरेंडर। गुरु मोरे मूर्ख देखी कुरीला शासन, महाप्रभु ने कहा मेरे को मूर्ख समझकर मेरे ऊपर शासन किया, तो इसलिए शिष्यों, इसी कारण से मेरे को शिष्य कहा गया। मैं इसलिए शिष्य हूं कि मैं चाहता हूं कि गुरु मेरे ऊपर शासन करे, और जिससे हम नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर शासन हो उस समय हम शिष्य नहीं है। सिंपल सी बात। तो शासन का मतलब है कि जैसे वो कहें वैसे करते जाओ, अपनी बुद्धि ना लगाओ, ना अपना मेटेरियल इंटेलिजेंस लगाओ, ना कोई इंटेलिजेंस लगाओ, अपने को बुद्धू समझ के रखो अपने हमेशा। उनका कैसा भी डिसीजन हो, कैसा भी लगता हो, बस वो हाँ कहें तो हम हाँ कहें, वो ना कहें तो हम ना कहें, इसको कहते हैं शासन। ये है सरेंडर का मतलब। फिर आप देखो कैसे एडवांसमेंट होता है। फिर क्या होगा? चित्ते ते कोरिया आइकिया हो जाएगा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं गुरु वंदना में, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया आइकिया। आइकिया का मतलब है कि आपकी चेतना और जो गुरु की चेतना है उसमें कोई अंतर नहीं। जो गुरु जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से आप सोच रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अब आप बिल्कुल पक्के शिष्य बन गए, उनके सोचने में और आपके सोचने में कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद इसका क्या अर्थ है कि गुरु सब कुछ जानते हैं? प्रभुपाद ने कहा गुरु सब कुछ जानते हैं इसका मतलब यह है जितना उनके गुरु जानते हैं उतना उनको जानना पड़ेगा। सब कुछ जानते हैं इसका अर्थ ये थोड़ा कि जैसे कृष्ण है वैसे नहीं है, ये नहीं कि पूरे सृष्टि में ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि है ना एक एक जगह पर अणु में परमाणु में, उसका अर्थ ये नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि जितना गुरु जानते हैं उतना जानना होगा। कोई गुरु है तो वो गुरु उतना जानता है जितना उनके गुरु जानते हैं, इसलिए ग्रंथ लिखे जाते हैं। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि जो भी मुझे पता है वो सब मैंने अपने ग्रंथों में दे दिया। तो उतना तो जानना पड़ेगा ना अगर प्रचार करना है तो फिर शिष्य बनता है वो व्यक्ति। जो शिष्य ही नहीं बन सका वो गुरु क्या बनेगा, है कि नहीं? जो खुद ही शासन में नहीं रहा वो दूसरों को कैसे शासन में लाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात। हाँ, डिटर्मिनेशन हमने बताया ना, ध्यान पूर्वक जप करने से डिटर्मिनेशन आता है। अटेंटिव चैंटिंग्स, अटेंटिव चैंटिंग से सारी क्वालिटीज डेवलप होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये जो जितने भी ये नाम अपराध हो रहे हैं ठाकुर भक्तियों ने कहा है इन अटेंटिव चैंटिंग के कारण होता है। इन अटेंटिव चैंटिंग द रूट कॉज ऑफ ऑल द ऑफेंसेस टू द होली नेम, प्रमाद को कहते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा गंभीरता होनी चाहिए चैंटिंग में, सबसे ज्यादा गंभीरता चैंटिंग के समय होना चाहिए। मतलब कोई भक्ति में गंभीर है या नहीं है उसको जब के समय देख लो, बस पता चल जाएगा कि ये अभी इतना सीरियस नहीं है। एक्सटर्नल अचीवमेंट्स तो बहुत कुछ हो सकते हैं संसार में, लेकिन चैंटिंग के समय वो कैसा है वो टेस्ट करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने बोला ये पल्स है, किसी भी टेंपल का पल्स है ये। जैसे वैद होता है ना वो आपकी नाड़ी टच करता है तो नाड़ी टच करके बताते हैं शरीर में क्या चल रहा है, तो इसी तरह से चैंटिंग से पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या है भक्तों का, बहुत आसानी से पता लगा सकते। वो भक्तों के संग में रहकर आएगा जो डिटरमाइंड है उनके साथ बैठ के जब करो, गंभीर भक्तों के साथ जो ध्यान से जप कर रहे हैं उनके साथ बैठ के जप करना चाहिए। लेकिन जो बातें कर रहे हैं अगर उनके साथ खड़े हुए तो आप ही बातें ही करेंगे फिर। कोई आकाश में पंछी देख रहे हैं उनके साथ खड़े हुए तो आप ही पंछी देखोगे, है कि नहीं? आपको थोड़ा गोलोक नजर आएगा। तो इसी तरह से जो गंभीर भक्त हैं जो तुलसी के पास बैठ के जप करते हैं, गंभीरता से जप करते हैं, प्रभुपाद के पास बैठ के जप करते हैं, कहने का अर्थ है कि भक्तों के बीच में बैठ के जप करना चाहिए। 16 वाला बिल्कुल उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए क्वालिटी में। 16 वाला के जब को बहुत ही ध्यानपूर्वक जब करना चाहिए, उसका प्रभाव फिर पूरे दिन रहेगा, पूरा लाभ मिलेगा, फिर आपकी चेतना जो है वो शुद्ध होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है गुरु का, सारी सेवा कर ले लेकिन 16 वाला अगर ध्यान से नहीं जब किया तो सब जो है कुछ समय के बाद ठंडा पड़ जाएगा, ज़्यादा साल तक गाड़ी नहीं चलेगी, ये गारंटीड है। जिसका 16 वाला ध्यान से जप नहीं हो रहा है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ। ध्यान से मतलब ये है कि कम से कम आपको चैंटिंग करना है चैंटिंग के समय, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, केवलम उस समय केवल हरि नाम लेना है और कोई नाम नहीं लेना। मन तो भटकेगा लेकिन जीवा को मन भटकाओ, बातें करने की इच्छा है ना, बाहर झांकने की इच्छा हो रही है वो सब नहीं करना है। ठीक है, हरे कृष्ण, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।